ओम शांति। माया के अनेक रूपों की इस सीरीज में रूठने मनाने की परंपरा जो हम देख रहे हैं चार दिन से, रोना रूसना फूंकना, मूड ऑफ होना और आज है नाराज होना, तो ये रूठना और मनाना ये परंपरा हमारे भारत देश की एक अनूठी अनोखी परंपरा है, जिसमें हम देखते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है उसको क्या चाहिए होता है, चंदा मामा। इसलिए वो अपने मम्मी से पापा से रूठ जाता है। कभी उसको चाहिए होता है दूसरे साथी का वो नया लोना, तब वो रूठ जाता है। फिर वो जब युवा होता है, बड़ा होता है, तब वो अपने प्रेमिका प्रेमी से रूठ जाती है और फिर उनको मनाने में उनको क्या होता है, एक अजीब सा आनंद होता है। फिर बाद में जब शादी हो जाती है तो पत्नी रूठ जाती है। अब ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात तब होती है कि पति चाहता है कि अब ये रूठी हुई पत्नी मायके चली जाए, लेकिन वो केवल धमकी देती है, लेकिन वो केवल उसकी एक अदा मात्र होती है, क्या करने की, अपनी फरमाइश पूरी करने की। इस रूसने फुगने और नाराज होने से हमारे देश के नेता भी कम नहीं है। हमें फलाना पद दो, हमें फलाना मंत्रालय दो, नहीं तो हम चले दूसरी पार्टी में। राजनेता हो, अभिनेता हो, हम देखते हैं जीवन में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में क्या है, ये रुसना फुगना नाराजी चलता ही रहता है। अब हम आते हैं ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने कौन सी बातों के लिए मना किया है कि आपको क्या नहीं होना है, ब्राह्मणी से नाराज नहीं होना है, रूठते भंजी से है और मुरली छोड़ देते हैं बाबा के, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। तो आज हम देखेंगे नाराज होने के कारण, निवारण और ये कौन सी फैमिली से आता है उसकी फैमिली को भी देख लेंगे। नाराज होना, पहले हम देखते हैं इस शब्द को, नाराज दो शब्दों से बना है, ये एक शब्द ना राज, राज राज को नहीं जाता है इसलिए नाराज होता है। तो कौन से वो राज है जो हमें बाबा ने बताए हुए हैं कि जिसकी विस्मृति से हम नाराज हो जाते हैं, कौन से राज है? हाँ, पहला तो ड्रामा का राज, फिर और हाँ राज पिछले जन्म का कि जरूर पिछला हमारा कुछ हिसाब किताब है, कुछ कर्म फिलॉसफी है, इसलिए अभी हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला हमसे इतना असभ्य व्यवहार कर रहा है जिसके कारण हम नाराज हो रहे हैं। अभी तक हम उसका नाम भी नहीं जानते, जान पहचान भी नहीं है, तो भी क्या हो रहा है, नाराजगी का कारण बन रहा है। और कौन सा राज है? हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि सामने वाला अल्पज्ञ है, उसके पास वो ज्ञान नहीं है, वो खुद ही अपने स्वभाव संस्कारों के क्या है, वश है, खुद ही क्या है, उलझा हुआ है, और हम क्या करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं क्या कि वो हमें संतुष्ट करे। और कौन से राज है जिसके कारण हम नाराज होते हैं, कौन सी बातें हैं, कौन कौन नाराज होता है? मनुष्य भी नाराज होते हैं तो प्रकृति भी नाराज होती है। आज हाँ, समय पर सहयोग न मिलने से नाराज, तो प्रकृति भी क्या करती है, हमें समय पर सहयोग नहीं दे रही है, तो प्रकृति भी हम नाराज है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया है, उसके साथ वैसा व्यवहार किया है, पशु भी नाराज हो जाते। देखा है, कुत्ता है बिल्ली है, सामने रोटी रखो और वापिस ले लो, फिर आपको पता चलेगा वो भी कैसे नाराज होता है। और कौन कौन नाराज होता है? मनुष्य साधनों पर नाराज हो जाता है, कभी टावर इंटरनेट, और कभी हैंग हो जाता है तो पूरा, फिर उसको जैसे कल भी हमने देखा था, क्रिकेट मैच चल रही है, फलानी टीम हार गई, इतने नाराज हो गए, उठाया रिमोट और सीधा टीवी पे टीवी फोड़ दिया। तो ऐसी भी बातें होती है कि अपना नाराजगी, अपना गुस्सा क्या करते हैं, व्यक्त करने के भी कई कई तरीके हैं। जैसे देखो, आज हमारे देश का किसान नाराज है, तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अपना अपना तरीका है। कोई आंदोलन करता है, कोई बात ही नहीं करता है, कोई बस तोड़ देता है, तो कोई अलग अलग तरीके हाँ, तो नाराज होने के तरीके और अपने नाराज हुए व्यक्ति को मनाने के तरीके भी बहुत हैं। तो चलो हम करते हैं बचपन के उन दिनों से शुरुआत। कहते भी है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो जब छोटे बच्चे नाराज हो जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि बच्चा नाराज है? एक तो वो मुंह फुला लेता है, खाना नहीं खाता है, और बात नहीं करता है, और रोता है, हाँ, चिड़चिड़ापन, झगड़ा करता है, चिल्लाता है, सुनता नहीं, और उसकी हाँ पढ़ाई भी नहीं करता। वो तो इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो तो बस बहाना चाहिए होता है। और उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुंह फुलाना, आंखों से पानी, या फिर नाक से दो दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि भाई जी, हम सारे कर्म इंद्रियों से विकर्मों को तो जानते हैं, आंखों द्वारा विकर्म, हाथों द्वारा, ये नाक द्वारा कौन सा विकर्म होता है? तो जब मुझे टॉपिक मिला, तब पता चला कि कभी कभी हमारा नाक भी विकर्म कर देता है। कैसे? नाक मोड़ दिया तो सामने वाला नाराज कि इतने लोगों के बीच में मेरे, मुझे नाक मोड़ दिया। और गुस्से के लिए भी कहा जाता है कि नाक, गुस्सा कहाँ पर है? नाक पर है। और एक बात मुझे याद आई कि खुशबू, स्मेल जो होता है, वो भी हमें कई स्मृतियाँ दिलाता है। तो ये भी हमें विकर्म के जैसा ही है। मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा आया 2013 में, मतलब सेवा में, और तब से रहा, तो बाबा के कमरे में बैठने के बाद वहाँ का जो रूम फ्रेशनर है, जैसे ही वो ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर था, जैसे ही वो ऑन हुआ और वो स्मेल आई, और मैं तुरंत उस जगह पे पहुंच गया, कहाँ, जहाँ मैं पूना में रहता था क्योंकि उस कमरे में भी वही वाला रूम फ्रेशनर था। तो देखो क्या करता है ये खुशबू, ये स्मेल भी हमें डायरेक्ट, बाबा का कमरा माना क्या है, वो वतन का एक कमरा है जहाँ हम भगवान से मिलन मना रहे हैं, लेकिन वो स्मेल से क्या हो गए हम, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये नाक कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो इस नाक, जो हमारे कहाँ थे हम विकर्म कराने के निमित्त बन जाती है, तो नाराज, नाराज होना उसके लिए ये इंद्रिय है, इसको क्या करना है ध्यान रखना है। तो नाराज किस पर, बहुत अंतर है, रुसना इसका फैमिली में जाते हैं पहले, कि नाराजगी, ये जो बच्ची है किसकी बच्ची है, असंतुष्टता की बच्ची है, वो उसकी जननी है, अगर हम किसी से नाराज होते हैं, मतलब क्या है, हम असंतुष्ट है, नाराज, राजी नहीं है, मतलब क्या नहीं है, खुशी राजी नहीं है, नाराज है, मतलब क्या नहीं है, खुशी राजी नहीं है। जब मधुबन में आते हैं तो दादी जी हमें पूछती है, बड़े पूछते हैं दादियाँ कि सब ठीक है, राजी खुशी हो, और हमें कुछ असुविधा है तो पूछते हैं। तो अभी पूछा कि रुसना, फुगना, नाराजगी, इसमें क्या अंतर है। तो ये आपस में भाई बहन ही है, फुगना रुसना, हाँ, तो ये नाराजगी बहन है और उनकी माँ है असंतुष्ट। हाँ, नाराजगी, हाँ, मूड ऑफ मतलब अभी थोड़े समय के लिए कुछ हुआ, अभी सुखदेव भाई ने गीत नहीं बजाया तो मूड ऑफ, फिर बाद में, हाँ, कि आज मेरा टॉपिक था और फलाना व्यक्ति आया ही नहीं, मूड ऑफ, या फिर आए थे इतने दिनों के बाद, एक रात मधुबन में रुके, अभी हमें फलाने स्पीकर की क्लास सुननी है, जैसे ही गेट के अंदर एंट्री हुई, अरे ये कौन बैठा है इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आ गए और सामने दिख रहे, तो इतना सा पता नहीं अब क्या होगा, क्या झेलना पड़ेगा, अभी आए हैं तो बैठ जाएं, लास्ट में एक फोटो तो खींच सकते हैं, खींच लेना बाद में तो ये सारी बातें होती है मूड ऑफ की, नाराजगी की, नाराज, ये मूड ऑफ की है, मूड ऑफ की। रुसना मतलब रुसना, अपनों के ऊपर ही हम रुसते हैं कि जब कोई मनाने आए, इसमें मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स नज़दीक के होते हैं, तो हम उनके ऊपर, हाँ, रुसना मतलब वहाँ पे मनाने वाला कोई होता है, जहाँ कोई मनाने वाला ही नहीं होता तो रुसने की बात ही नहीं है फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट
और उसको पता चाहिए,
हाँ, उसको, हाँ, उसको हम दिखाते हैं कि भाई हम रुसे हुए हैं, अभी जोर जोर से, मैंने देखा था मेरी मासी जब वो रुसती थी या नाराज हो जाती थी तो उठ जोर जोर से चीजों को पटक देती थी हाँ, मेरी बात भी है, मैं अपने मम्मी पापा पर कभी रुसता नाराज नहीं होता था, भाई पर होता था, और सबसे ज्यादा मैं अपने जीवन में किसी से नाराज रुसा हूँ तो अपने टीचर से, फैकल्टी से, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा सा मुझे क्या चाहिए था फ्रीडम चाहिए था, तो मैं टीचर्स से बहुत ज़्यादा नाराज होता था, हाँ, मनाते थे। अच्छा। मुझे याद है मेरे टीचर बालवाड़ी से लेकर बीसीए लास्ट ईयर तक मुझे मनाए वो भी एक कला होती है रूसने की और फिर मनवा लेने की। फिर मुझे याद है जब मैं बीसीए फर्स्ट ईयर में था, तब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मुझे याद है वो टीचर भक्ति वाले थे और मैं मधुबन पूरा एक साल रुक के गया था, तो वो मेरे पड़ोसी ही थे, वो जानते थे। फिर वो मुझे समझाने लगे कि देखो ये संसार का नियम है, ये ब्रह्मचारी रहना, ये ओम शांति, ये सब ठीक नहीं है, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, समझो इस बात को तो फिर मैंने तो समझा दिया, फिर वो बाद में मुझे टोके, बाद में, अरे तुम तो ओम शांति वाला है ना, तो फिर मैं नाराज हो गया था। और फिर जब होमवर्क चेक कराना था तो बड़ी आशा लिए बैठे थे कि अभी ये नोटबुक लेके मेरे सामने आएगा, लेकिन मैंने तो अपना इंतज़ाम कर ही लिया था, एक दोस्त के पास अपनी नोटबुक दे दी, उन्होंने चेक भी कर दी, मेरी नोटबुक मेरे पास पहुंच भी गई। फिर उन्होंने कहा जिसने लिख के नहीं लाया है वो खड़े हो जाओ, मैं तो खड़ा भी नहीं हो रहा था, पूरा ध्यान उनका मेरे ऊपर था। मैंने नज़दीक आए, दिखाओ नोटबुक, दिखाई, ये तो चेक हुई पड़ी है किससे चेक करवाई बताओ कौन तो जिस फ्रेंड ने चेक करवाई वो बेचारा खड़ा हो गया, डांट खा ली। फिर बाद में वो सब बातें हो गई, फिर उस फ्रेंड ने मुझे समझाया कि देखो उनसे नाराज होने से क्या होगा, उनकी सैलरी तो बंद नहीं होने वाली, नुकसान तो तुम्हारा ही है। बिल्कुल उसी तरह बाबा भी हमें वही बात समझाते हैं कि ब्राह्मणी से नहीं रूठना है, नाराज नहीं होना है। अभी शिवरात्रि आ रही है, मानव सेंटर पर कुछ शिवरात्रि की सेवा है। दीदी ने कहा भाई जी हाँ आप रुको, आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में फलानी सेवा करनी है। लेकिन भाई जी का तो ऑफिस शेड्यूल बहुत टाइट है, दीदी मैं 5:30 बजे नहीं आ सकता, 6:30 बजे आऊँगा। दीदी नाराज, शिवरात्रि साल में एक बार आती है, देख लो। अब नाराजगी क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है इधर से उधर, उधर से इधर। तो क्या करना चाहिए जरूर तो देखो बीच का मार्ग निकालना बहुत जरूरी है। दीदी ने कहा है मतलब गुरु का कहना, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। वो गुरु की गद्दी पर बैठी है, थोड़ा प्रयास तो करके देख लो। जैसे घर में बीबी बच्चों के कारण एक प्रयास कर लेते हैं, तो उस गुरु के लिए 2 प्रयास करके देखो। कुछ बहाना ढूंढ लो, उस बॉस को बता दो मार्ग मिल जाएगा। फिर होता है अपनों के ऊपर, चलो यहाँ तो बड़ी दीदी है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, हमने कुछ अपशब्द का उपयोग तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन में रूठे, नाराज हो गए दोनों भी। और क्या हो गया, सेंटर पर नहीं आए, ये सब हो गया। नुकसान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम मुरली भगवान की मिस कर रहे हैं। कई बार लौकिक बहन भाई है, वो आपस में रूठ जाते हैं। बहन का कुछ काम करवाना था और भाई ने नहीं किया, तो बहन तुरंत क्या बोलेंगी, हाँ पहले तो अच्छा था, अभी तो शादी हो गई है ना, बीबी बच्चे इनके कारण बिगड़ गया है। हाँ आपको ये बात पता है कि उसकी शादी हो गई है, अभी उसके साथ उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ चुकी है, तो ये बात को भी आप समझ सकते हो कि उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ चुकी है, इसलिए वो मुझे समय नहीं दे पा रहा है। तो बहन के इन शब्दों से, कटु वचनों से क्या हो जाता है, भाई नाराज हो जाता है, और फिर संबंधों में, रिश्तों में क्या हो जाता है, दरार आ जाती है। अभी कोई डैम है और उसके दीवार में दरार आ जाए, फिर आप कुछ भी भर दो उसमें, रिपेयरिंग इतना पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं लीकेज रह जाती है। तो नाराजगी से हमें दूर रहना है, तो बाबा ने भी कई युक्तियां बताई हुई है। एक मुरली है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जैसे दुनिया में वो लोग रुसते हैं रूठते हैं, या रुसना और रूठना उस रिश्ते की पहचान मानी जाती है, उसको प्यार कहा जाता है दुनिया में, तो क्यों ना हम वही रिश्ता बाबा के साथ जोड़ लेते हैं, शिव साजन, और हम सजनी बन जाते हैं। उसके साथ रुसो, उसके साथ फुगो, उसके साथ नाराज हो जाओ। तो बाबा ने विधि बताई, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये काजी क्या होता है काजी का अर्थ क्या है, हाँ काजी का मतलब नहीं उर्दू शब्द है, वकील। बाबा ने वकील कहा है कि अगर 2 लोग आपस में झगड़ते हैं, मुरली में वकील कहा है, और भाषा तो हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे रूठते हैं आपस में, कुछ अनबन हो जाती है, तो दूसरे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है और फिर वह राय सलाह देता है, तो इसमें और ही खतरा है और टाइम वेस्ट है। अगर हम बाबा के साथ अपनी बात रखते हैं तो हमें डिसीजन जो है कैसे मिलता है, कई सेकंड में मिल जाता है। तो ये मुरली की डेट बताऊं, उस मुरली की डेट है 28/11/79। प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति में कैसे रहे, तो प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा ने इसमें डायरेक्शन दिए हैं। फिर असंतुष्टता के कारण क्या क्या है, अप्राप्ति, कंपैरिजन और इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, कि जैसे हम किसी व्यक्ति से क्या चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, या सहानुभूति चाहते हैं, सहकार्यता चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, नाराजगी हो जाती है। चलो अपनों से है तो वो मनाने आ जाएंगे, लेकिन कई बार होता है कि ऑफिस में, कार्य व्यवहार में, ये बचपन का संस्कार हम आगे ले जाते हैं और वहाँ कोई मनाने वाला नहीं मिलता है तो हम कुछ गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और बुरी लत लगती है, व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। तो ये बचपन का संस्कार है, इसको कहाँ जोड़ना है, सिर्फ ज्ञान के साथ जोड़ते हुए इससे हमें क्या करना है, ये संबंध बाबा से जोड़ने हैं, न कि मनुष्यों से हमें नाराज होना है। क्यों, मनुष्य तो है ही अल्पज्ञ और हमें कौन मिला है, सर्वज्ञ शिव बाबा। फिर उसका निवारण क्या है, हाँ निवारण तो वही है, बाप से ही जुड़ना है, लेकिन नाराज तो मनुष्य कर रहे हैं ना। बाबा ने कभी कहा है 100 लोग भी आएंगे आपको नाराज करने, आप राजी रहोगे, बाबा ने प्रश्न पूछा, राजी रहोगे, बाबा के सामने तो हाँ कर देते हैं लेकिन यहाँ एक भी भारी पड़ जाता है। हाँ अभी अभी हमने जो बातें देखी, ड्रामा, मूवी, प्ले, पपेट शो, कार्टून शो, गेम, हाँ प्ले में आ गए, हाँ ये एक इवेंट, ड्रीम, ये एक स्वप्न है। तो उन बातों को हमें समझना है कि हमें याद करना है, पहले तो हम इससे भी सीख सकते हैं कि हम जीवन में कब नाराज हो गए थे। बचपन दोनों भी है, शारीरिक भी है और ईश्वरीय। चलो हम तो बचपन से ज्ञान में है तो हमारे दोनों बचपन साथ साथ में चले, तो वो भी एक बात याद आ रही है बात है 1997 की, जब हम मधुबन में सेवा में आए थे, दिवाली के वो दिन थे, यज्ञ की डायमंड जुबली पूरी हो चुकी थी 96 में ही, पूरा साल मनाया, और 97 थी दादी जी की प्लैटिनम जुबली, प्रकाशमणि दादी। अब तीसरी में था तो जब आप अभी आप लोगों को कल सौगात मिली ना, तो बस उसी मेडिटेशन हॉल में दादी जी आ गए और मम्मी के गोद में हम बैठे थे कि अभी सौगात मिलेगी, सौगात मिलेगी, छोटा था ना तो दादी जी आए, दादी जी की जो स्टाइल होती थी, दादी जी ने टोली के डिब्बे से टोली उठा के दिखाई, ये मिलेगा, फिर सौगात भी उठा के दिखाई, ये मिलेगा। और हाँ बच्चे हम दो तीन ही थे, दिवाली का समय था, उसमें और ही ज्यादा प्यार मिला दादी जी का, तो फिर खुश हो रहे थे। फिर अचानक से दादी जी के कान में बताया गया कि दादी ये सौगात बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों को देंगे, बच्चों के लिए दूसरी सारी खुशियों पर पानी फिर टोली हाथ में पकड़ा दी, दिल खुश लेकिन दिल तो अंदर से बहुत नाराज हो गई थी किस पर नाराज हो गई थी, जो सबको संतुष्ट करने वाली संतुष्ट संतोषी माता स्वयं दादी जी, उन पर हम नाराज हो गए थे चलो फिर वहां से उठ के दोनों भाई गए, बहुत दोनों आंखों से तो पानी बह रहा था, विशाल भवन में जाके रजई में सो गए, गोदड़ी में सो गए, शाम का समय था। फिर जैसे ही सौगात पूरी हो गई, दादी जी अपने कमरे में गए और दादी जी को वो बात याद आ गई कि वो बच्चे तो गए हैं मेरे सामने से उठ के। दादी जी ने तुरंत बहन जी को बताया, मुन्नी बहन जी को, कि वो जो बच्चे थे ना उनको बुलाओ। फिर मम्मी आई, फिर से एक बार पाउडर लगाया। फिर दादी जी के कमरे में हमें ले गए, फिर दादी जी ने टोली खिलाई और एक सुंदर सा बैग दिखाया। उस रेड कलर का बैग था और फैंसी सामान रखने का, लंबी चैन थी उसकी और उसके ऊपर गाड़ी का चित्र, जो आत्मा और का चित्र होता है, फर्स्ट लेसन उस पर प्रिंट था। फिर दादी जी ने आत्मा का परिचय दिया और पूछा कि आत्मा कहाँ रहती है, तो हमने दिखाया बैग में रहती है। वहां बताया ना, तो वहां रहती। फिर दादी ने फिर एक बार परिचय दिया और फिर बताया आत्मा तो यहाँ रहती है। फिर दादी ने पूछा आत्मा कहाँ रहती है, तो हम उठ के चले गए और दादी को टच किया, आत्मा यहाँ रहती है। उस प्रकाश मणि को भी टच कर दिया। फिर दादी जी ने समझाया, यहाँ उंगली रखी और बोला आत्मा यहाँ रहती है। तो देखो, रूठे हुए को मनाना, हम बड़ों से सीखते हैं, बाबा से सीखते हैं, दादियों से सीखते हैं। तो अभी हमारे संबंध संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है, उनको भी हम ऐसी रूठी हुई आत्माओं को, कि जो भगवान के ऊपर रूठी हुई है, नाराज है कि हमने इतने उपास किए, इतनी प्रार्थनाएं की, इतना दान किया, तो भी ये मेरे साथ ही क्यों, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों, हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो दादियां मिल गई, हमें तो ये ब्राह्मण परिवार मिल गया कि जो हमें मनाता रहता है, तो कब तक हम पालना लेते ही रहेंगे। अभी हमारा कर्तव्य क्या है, उन नाराज दुखी आत्माओं का नाराजगी दूर करने का, उस असंतुष्टता रूपी मम्मी के गोद में बैठी हुई उस असंतुष्टता को उतार के क्या करना है, परमात्म गोद में उनको बिठाने का समय है। तो नाराज नहीं होना है, लेकिन क्या करना है, राज को जानना है। जब हम राज को जानेंगे तब क्या हो जाएगा, सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। और क्या होगा, हाँ, कि अपनी नाराजगी हमें व्यक्त करनी चाहिए, हाँ मना रहे हैं, लेकिन अब मान ही नहीं रहा है तो क्या करे, गुस्सा करे। उसका रूप है गुस्सा। तो बाबा ने कहा है बच्चों को मारना नहीं है, उनको कुछ सिखाना है, तो क्या करो, हाँ। तो युक्ति रचनी पड़ेगी। बड़े है, नाराज है, चापलूसी तो नहीं करनी है, लेकिन उनको मनाना भी है। देखो, भगवान तो हमारे ऊपर नाराज नहीं होता, लेकिन भगवान के लिए भी क्या कहा जाता है कि भगवान मान जाते हैं, वो नाराज भी नहीं होता तो भी हम उनको क्या करते हैं, मनाते हैं। किस रूप से, उसको सामने क्या लेके जाते हैं, फल फूल। अभी वो तो है ही क्रिएटर, वो फल फूल, वो विश्व का रचयिता है, और हम उसको खुश करने के लिए क्या ले जाते हैं, फल फूल। तो देखो, सच्चाई और सफाई, ये बात है। अगर बड़ों को राजी करना है, उसका उनका विश्वास संपादन करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे अंदर सच्चाई और सफाई होगी तो जरूर वो नाराज नहीं होंगे। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए हमें राजी रहना पड़ेगा। उनको कैसे वापस लाए,
फोकस कर रहे नए लोगों को
लाने के,
जो पहले थे 10 साल ज्ञान में छोड़ के चले गए।
तो जो नए लोग आ रहे हैं, उनको हम पुरानों की ऐसी विशेषता बताएं कि उन्होंने ना ऐसी सेवा की थी, तो नए जाके उनके बता, हाँ वही वही पुरानों को वो जाके बताएंगे नए की, हाँ। नहीं, उसमें तो रिस्क है। तो उनके प्रति मनसा द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं। फिर व्यवहार में जबरदस्त नाराज है और अभी क्या करें, तो हमें क्या करना है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। और कुछ प्रोग्राम है विशेष, जिनकी विशेषता आती है काम में, तो उनको रिक्वेस्ट करो कि नहीं, आपकी आवश्यकता है, प्लीज आप आओ, तो जरूर आ जाएंगे।
उनको ले यहाँ बांध।
एक तो क्या है, नाराज हो जाते हैं तो बात करना बंद हो जाते हैं, तो वही एक तो हमें क्या नहीं करना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। भले वो नाराज हो गया है लेकिन अपनी तरफ से हमें क्या करना है, पूरी तरह से राजी रहना है और पूरी तरह से हमें क्या होना है कि एक लक्ष्य रखना है कि उसको कैसे हम राजी करें। ऐसे नहीं कि हमारे व्यवहार से वो चिढ़ जाए और ही नाराज हो जाए, लेकिन युक्ति रचनी है। बाबा ने कई युक्तियां हमें बताई हुई है, तो उसमें बाबा ने मधुबन वालों से बात करते हुए बताया हुआ है कि 29 जनवरी 77 की मुरली है, बाबा ने कहा कि मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है कि तीनों कालों का राज जानने वाले फिर भी नाराज हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये भूल जाते हो, अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज फुल नहीं है, इसके कारण आप क्या हो जाते हो, नाराज हो जाते। तो वो जो तख्त है, जो स्टेज है, वो हमसे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान भूल जाते हैं। अगर ज्ञान फुल है, नॉलेज फुल है, हम उस तख्त पर बैठे हुए हैं तो हमसे कोई नाराज होगा ही नहीं। फिर बाबा ने मधुबन की महिमा करते हुए कहा कि मधुबन तो क्या है, स्वर्ग का मॉडल है, और यहाँ बैठे हुए देवता अगर नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाए तो साक्षात्कार क्या होगा दुनिया वालों को, हनुमान का साक्षात्कार होगा। फिर कई उदाहरण बाबा मुरलियों में देते हैं कि क्या नहीं बनना है, छुई मुई का पौधा नहीं बनना है, टच मी नॉट प्लांट नहीं बनना है। तो क्या बनना है, संतुष्ट बनना है, कल्प वृक्ष बनना है, छुई मुई का प्लांट नहीं बनना है, रूहे गुलाब बनना है, और राजयुक्त युक्तियुक्त बनना है, किसी कोई हमारे से नाराज न हो। हाँ हो भी गया तो थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो उसको अभी। हाँ उसमें फायदे भी है नाराज होने में, एक तो वही बात मिल जाती है ना, जो चाहिए वो चीज मिल जाती है। और नाराज नहीं होना है इसके लिए तो आप ही बता दो। तो जो नाराज होकर चले गए हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो बहन जी पत्र लिख रही है अपने उस स्टूडेंट को जो नाराज हुए हैं। प्रिय आत्मन, आपको भगवान ने ढूंढा और तुमने फिर से अपना हाथ उससे छुड़ा दिया। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं कि यह हमारा पिता है, परमात्मा आत्मा का पिता, तो वह किसी शरीर के तो नहीं आएगा, किसी के शरीर में तो नहीं आएगा। अगर आएगा तभी तो बता पाएगा, किसी के शरीर में आए बिना कैसे सुनाएगा। तो शरीर के वह नॉलेज फुल कैसे आकर नॉलेज दिया होगा, बिना दिए तो नॉलेज फुल कहलाएगा नहीं, आखिर किस समय दिया होगा। आपको अगर अभी तक यह बात समझ में नहीं आई तो आप दूसरों को क्या समझाते थे, अगर आई थी तो क्लास में आना क्यों छोड़ दिया, पढ़ाई क्यों छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ी माना शिव बाबा का हाथ छोड़ा। क्या हुआ जो आप दूसरों को पार लगाने की बातें बताते थे और आज खुद ही डूबने की राह पकड़ ली। तकदीरवान बनते बनते बदनसीब क्यों बनने चल दिए। कल तक आप अपने लक्ष्य व पुरुषार्थ के बारे में व सेवाओं के बारे में क्या क्या बातें करते थे, और आज आपको क्या हुआ जो खुद ही भटक गए। मेरे भाई, क्या संदेश देने का कार्य पूरा हो गया है, या सतयुग आ गया है, या दुनियावी अवगुणों का सफाया हो गया है। विश्व नवनिर्माण का कार्य पूरा हो गया है जो आप आराम करने की सोच रहे हैं। क्या सिर्फ आप अब स्वार्थ के लिए ही जीना चाहते हैं या सिर्फ लौकिक परिवार के लिए ही जीने का मकसद बना लिया है? आप सारे संसार को मदद कर सकते हो, फिर एक निम्न हद की सीमा क्यों बना रखी? आप इतना कर सकते हैं जिससे लाखों का भला हो सकता है, फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? क्या दुनिया के दुख दर्द सब समाप्त हो गए हैं, या आपको किसी के दुख दिखाई नहीं देते, या आपको किसी की भावनाएं फील नहीं होती, या आपकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, या आप में दिल शिकस्ती आ गई है, या समय की पुकार आपको सुनाई नहीं देती, या माया में इतनी शक्ति आ गई है जो आप जैसे दृढ़ निश्चयी, अति आत्मविश्वासी, प्रबल पुरुषार्थी, हिम्मतवानों का भी रास्ता चट्टानों की तरह रोक कर आपको अपने चंबे में फंसा लिया है। कमाल है माया मौसी की कि जिसने दुनिया को पहचान सकी, उस भगवान को जिसने परख लिया, पहचान लिया, और माया ने ऐसा रूप बनाया कि उसको नहीं पहचान पाए। भैया, माया रावण दुश्मन के रूप में नहीं, साधु के रूप में आती है, सोने के हिरण के रूप में आती है। क्या आपकी परख शक्ति इतनी ढीली हो गई है? मेरे भाई, आपने भगवान को किस लिए छोड़ा? भगवान ने तो कभी परिवार, पढ़ाई, नौकरी छोड़ने के लिए कहा ही नहीं, बैलेंस रखने के लिए कहा है। क्या आपने अधिक धन कमाने के लिए, या किसी के डर से, या किसी से नाराज होकर, या फिर माया से दोस्ती कर ली है, या विकारी जीवन जीने की इच्छा करने लगे हो? भैया, पैसा बहुत है, कुछ है पर सब कुछ नहीं। और भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष, तिलक, ये सब धन के पीछे भागते तो भारत इस हालत में क्या होता? या पैसे सर्व सुख देता तो राजा भर्तरी, गोपीचंद, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध अपना राज्य न छोड़ता? मेरे भाई, भगवान इन सब से बहुत बड़ा है, और आपका जन्म इतने छोटे उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम अपनी तो क्या लाखों की जीवन नैया पार लगा सकते हो। तुम कहाँ फंस गए हो और क्यों उलझन कर और फंसते जा रहे हो? तुम्हारी मंजिल यह नहीं, तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा क्यों? तुमने इतनी जल्दी घुटने क्यों टेक दिए? तुम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हें अदम्य शक्ति है। तुम्हें तो अभी बहुत विकराल, बहुत विशाल परिस्थितियों का सामना करना होगा, और तुम तो छोटी छोटी सी बातों से इतना घबरा गए कि पढ़ाई छोड़ दी। अरे सोचो, तुमने कौन सी पढ़ाई छोड़ी है? परीक्षाएं तो सभी पढ़ाई में होती है। क्या तुम परीक्षा से घबराने वाले स्टूडेंट हो? नहीं, तुम एक बहादुर सैनिक हो जो युद्ध से भी नहीं घबराते, तो परीक्षा उसके आगे क्या है? हमने एक बार पढ़ा था कि चींटी हाथी को मार देती है, पर आश्चर्य कहाँ, हाथी कहाँ और चींटी कहाँ? अगर हाथी सिर्फ उसके ऊपर पैर रख दे तो चींटी का कुछ भी पता नहीं लगेगा, पर शायद हाथी यह कोशिश ही नहीं करता। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? अरे भैया, भगवान के मिलने की बात भी आपकी ऐसी हालत है तो दुनिया का क्या होगा? अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो आखिर कब करोगे? जब भ्रष्टाचार, पाप, अनैतिकता लाइलाज हो चुका है, नहीं तो तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते जो सिर्फ अपने लिए सोचो। तुम्हें दूसरों को जीवन देते व जीवन बनाने के लिए जीना है। पैसे से जीवन नहीं बनता। ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, जगदीश भाई पैसे से नहीं बने थे, न ही मदर टेरेसा, गांधी जी, सुभाष चंद्र, विवेकानंद, भगत सिंह आदि लोग पैसे से बनाए जा सकते। अगर हमारे पास अभी समय भगवान के लिए नहीं है तो आगे चलकर भगवान के पास हमारे लिए समय नहीं होगा, तब तक उसको बहुत मिल चुके होंगे। देखो, उसने आपको ढूंढा और आप उसका हाथ छोड़कर किसी और के बन गए। क्या भगवान से शक्तिशाली, उससे ज्यादा मददगार, उससे ज्यादा रहमदिल, स्नेह का सागर, वफादार, ईमानदार आपको कोई और मिल गया है? अभी भगवान ऑफर कर रहा है और आप किस सोच में हैं? क्या भगवान का बनने से आपका कोई नुकसान हो गया है, या आपको कोई संशय आ गया है, या किसी के कोई बात हो गई है? तो भैया, मेरे ये आपके घर है, आपके पिता का घर है, आप खुले हृदय से अपनी बात कर सकते हो। दूसरी सभी पुरुषार्थी है, सभी में कमियां हैं, किसी से कोई गलती हो गई तो उसे छोटा समझ माफ कर देने में हम सब की भलाई है। और आप लोग ज्यादा समझदार हैं, इसलिए किसी भी छोटी बात के पीछे अपने अनमोल समय व अनमोल कमाई को क्यों गंवाते हो? आपकी बहन होने के कारण यह हमारा कर्तव्य है कि हम आपका भला चाहें, इसलिए हमने आपको यह पत्र लिखा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप सब कुछ भूल अपना वर्षा न पढ़ाई व पुरुषार्थ करने के लिए एक बार पुनः पधारे। आपका अपने घर में सदा स्वागत है। अगर कोई हमसे गलती हुई हो जो आपको फील हुआ, जिस कारण आपने पढ़ाई छोड़ी, तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान से वर्षा लेने में हमने आपके सामने बाधा खड़ी की। भगवान शायद हमें माफी कभी माफ नहीं करे, पर आप हमारी अल्पज्ञता पर जरूर रहम करेंगे और पुनः आप नए उमंग उत्साह से पुरुषार्थ में तत्पर होंगे। ऐसी हमें आपसे आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाए। परिवार में आपसे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। निश्चय है कि आप सबकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए फिर से शिव बाबा का हाथ पकड़े, आपके आने का हम सबको इंतजार है। ईश्वरीय सेवा में आपकी शुभकांक्षी बहन बी के सुमन, लखनऊ। ओम शांति।
तुम ही हो।